नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा मास कम्युनिकेशन, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है जनसंपर्क एक परिचय। जी हाँ, आपका लेसन नंबर 19 है और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री सुनील कुमार जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम जनसंपर्क एक परिचय।
नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है आपके पाठ का मॉड्यूल 5। जो पाठ है वो है 19, विज्ञापन तथा जनसंपर्क, जिसके अंदर हम लोग जनसंपर्क एक परिचय पर चर्चा करेंगे। जनसंपर्क शहरों और गांवों में बीते 3 दशक से, जब से टेलीविजन की शुरुआत हुई, प्रिंट ने जो है और व्यापक रूप से लोगों तक अपनी पहुंच बनाई, और इसके अलावा रेडियो ने भी जिस तरीके से लोगों के जीवन में अपनी जगह बनाई है, उस हिसाब से जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण जो एरिया है या जो क्षेत्र है वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा है। स्वदेशी चीजों से निर्मित उत्पादों की पहुंच या उनकी मांग सोसाइटी में बहुत ज्यादा होने लगी है। सोसाइटी कहीं ना कहीं एलोपैथ से को मूव करके, एलोपैथ को छोड़ करके आयुर्वेद की तरफ जा रही है। तो इन सभी पद्धतियों का अपना एक ऐतिहासिक, प्राचीन और प्राकृतिक रूपी महत्व तो रहा, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वर्तमान पीढ़ी कहीं हद तक करीबन सन 2000 तक भूल चुकी थी। बीते 2 दशकों में या बीते 22 सालों में इसका इतना प्रचार हुआ और उस प्रचार से लोग और इसका इतना उपयोग हुआ, उसके फायदे, उनके लाभों को लगातार विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, जिसको हम लोग जनसंपर्क कहते हैं, उन माध्यमों से इन सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह देना, इससे फायदा यह हुआ कि विज्ञापन ने लोगों को व्यापक स्तर पर सूचित किया है, जनसंपर्क में लोगों को साधा है। यह जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जो हम लोग बात कर रहे हैं, संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महसूस किए बिना उस क्षण की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हम उसका उपयोग हर समय करते हैं। अब जैसे एक विज्ञापन को हम लोग जानते हैं और कैसे जनसंपर्क हो सकता है ना, तो हम उस स्थिति पर विचार करें जब स्कूल जाने वाला एक बच्चा स्कूल पहुंचने के लिए बस पकड़ने के लिए घर छोड़ता है, वह बच्चा किस तरह जाता है। आप सही हैं बस स्टॉप पर, यह बस मार्ग नंबर की एक बोर्ड पर सूचना के साथ एक आश्रय के रूप में यात्रियों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध होता है। अगर दूसरा उदाहरण देखें, सड़क पर लगे हुए साइन बोर्ड आपको एक स्थान विशेष पर पहुंचाने के लिए दिशा बताते हैं। सोचिए कि बिना साइन बोर्ड के कितना मुश्किल होता अपने जगह पर पहुंचना या सही रास्ते का चयन करना। अब इसी स्थिति में मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कैसे स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग लोगों ने ज्यादा किया। पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें टूथपेस्ट के नाम से बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के पेस्ट आते थे और उन पेस्टों को जनरली हम लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे आप देख लीजिए तो कोलगेट के नाम का जो टूथपेस्ट था वो सबसे मशहूर था। हुआ क्या, उसके कई सालों के बाद में लगातार टूथपेस्ट में नमक की बात चलने लगी, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में नमक का दांतों पर प्रयोग, नमक और तेल का दांतों पर प्रयोग, नमक तेल और कोयले का दांतों पर प्रयोग, नमक तेल कोयला और हल्दी का दांतों पर प्रयोग, इन सबके दांतों में इस्तेमाल से दांतों के बहुत सारे अवगुण दूर होते थे। लेकिन हम लोग केमिकल युक्त जो पेस्ट हम लोग अपने अपने सुबह दतून करते समय जो करते थे, या फिर दतून का प्रयोग, नीम की दतून हो गई या अलग अलग पेड़ों की छालों से दतून करना, इनके अलग अलग लाभ और इन लाभों का जो दतून हम लोग करते थे नीम का, उस नीम के रस को सुबह सुबह हम लोग अपने शरीर में जो ले जाते थे, उससे शरीर को जो प्राकृतिक लाभ होते थे, लोग निरोगी होते थे, तो उन्हीं सब का एक्सट्रैक्ट मिला करके बाबा रामदेव हो गए, श्री श्री रविशंकर जी हो गए, या अन्य जो आयुर्वेद पर जो कंपनियां काम कर रही हैं उन्होंने इसी फॉर्मूले पर काम किया और टूथपेस्ट में नमक डालना शुरू किया, टूथपेस्ट में कोयला या चारकोल डालना शुरू किया, टूथपेस्ट में हल्दी का प्रयोग करना शुरू किया और बहुत सारी चीजें होती हैं जो टूथपेस्ट में वर्तमान में प्रयोग हो रही है। और वो लोगों तक पहुंची कैसे, अब जनसंपर्क का काम शुरू होता है। मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, तो उसमें टेलीविजन का उपयोग हुआ, उसमें अखबारों पर विज्ञापन दिए गए, टेलीविजन में विज्ञापन दिए गए। आप देखते होंगे बहुत ब्यूटीफुल एक विज्ञापन आता है कि एक डॉक्टर है और एक वो डॉक्टर है और जो डॉक्टर के कपड़े पहने हुए वो आपको ये विश्वास दिलाता है कि ये जो टूथपेस्ट है, ये जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है वो क्या है, वो आपके दांतों के लिए वाकई लाभकारी होगा। और वह आयुर्वेदिक डॉक्टर धीरे धीरे अपने कपड़े बदल करके और फिर धीरे से स्क्रीन पर एक संत की एंट्री होती है और वो इस प्रोडक्ट के फायदे के बारे में बताता है, आयुर्वेदिक पद्धति के फायदे में बताता है। कहीं ना कहीं विश्वास को जागृत करना और लोगों तक ये उन प्रोडक्टों को खरीदने की इच्छा को डेवलप करना ताकि वो उनके अंदर इच्छा डेवलप हो और वो इन चीजों को खरीदे। तो इस तरीके से एक जनसंपर्क सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, जनसंपर्क इन सब चीजों के लिए, साइन बोर्ड के द्वारा इन्फॉर्मेशन देना, विज्ञापन के द्वारा जनसंपर्क करना, तो जनसंपर्क का मतलब है जन से संपर्क, जनसंपर्क का मतलब है जन से संपर्क। तो हम इस पाठ में क्या क्या बातें करने जा रहे हैं इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे मोटे मोटे उद्देश्य क्या हैं, हमारा पहला उद्देश्य है जनसंपर्क का अर्थ बताना, दूसरा उद्देश्य उदाहरण के साथ जनसंपर्क के उद्देश्यों की व्याख्या करना, तीसरा उद्देश्य जनसंपर्क के उद्भव का पता करना, चौथा है सरकारी जनसंपर्क की संरचना तथा रणनीतियों पर चर्चा, और अंतिम है जनसंपर्क के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर स्पष्ट करना। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पहले ही दे चुका हूं जिससे कि आपको समझ में आया होगा कि विज्ञापन क्यों मनाए जाते हैं और जनसंपर्क क्यों साधा जाता है। राजनीतिक जगत की जब हम लोग बात करते हैं, जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो नेता का जनता के साथ में व्यापक तौर पे जनसंपर्क अभियान चलाता है। चुनावों में यह अभियान बहुत विकराल और व्यापक हो जाते हैं। उनका सीधा उद्देश्य है कि जो जनता का वोट है उन वोटों को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना और अपने फेवर में उन वोटों को ले लेना। ये एक बड़ा और व्यापक इसका प्रभाव जो है दिखाई देता है। क्या जनसंपर्क की अवधारणा क्या है, जनसंपर्क की अवधारणा पे अगर हम लोग चर्चा करें, मैं एक व्यापक अवधारणा आपको उदाहरण के माध्यम से दे चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पाठ पर चर्चा करनी है, हमें आपको परीक्षा के लिए भी तैयार करना है, तो हम लोग पहली बात करते हैं जनसंपर्क की अवधारणा। जनसंपर्क का अर्थ क्या है, आपने पहले ही सीखा है कि संप्रेषण द्विगामी प्रक्रिया है जहां प्रेषित संदेश व सूचनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी प्राप्त की गई। यही जनसंपर्क हेतु भी उपयुक्त है। यह बोले गए या लिखे गए शब्दों के साथ किसी अन्य के साथ संप्रेषण के संबंध में है। इसमें दृश्य या किसी अन्य माध्यम का उपयोग भी किया जा सकता है। संप्रेषण तथा जनसंपर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा विभिन्न तरीकों से हमारे संपूर्ण जीवन भर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले मॉड्यूल में आपने पहले ही जान लिया है कि हम मात्र देखकर या बोलकर या अपनी भावभंगिमाओं से या गतिविधियों से संप्रेषण कर सकते हैं। ये बात आप और हम लोग सब जानते हैं। यदि इसका उचित उपयोग किया जाए तो संप्रेषण का प्रयोग सूचना, शिक्षा, आश्वस्त करने या जब अवसर हो तो किसी स्थिति पर सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जनसंपर्क में शामिल है नंबर एक, एक संगठन और इसकी जनता के माध्यम द्विपक्षीय संप्रेषण, और दूसरा जनता की मानसिकता एक निश्चित दिशा में परिवर्तन करने की दृष्टि के साथ किया गया संप्रेषण। हम संपर्क या जनसंपर्क को नैतिक तरीके से अपनाकर लोगों को प्रभावित करने या उन्हें समझाने के लिए किए गए संप्रेषण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जनसंपर्क की परिभाषा के बारे में अगर कुछ आता है तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि जनसंपर्क को नैतिक तरीका अपनाना, लोगों को प्रभावित करना और उन्हें समझाने के लिए किए गए संप्रेषण के रूप में समझा जा सकता है। यह समझना जरूरी है कि यहाँ जनसंपर्क में संप्रेषण एक प्रापक घटना है, अर्थात प्रेषक इसे नियंत्रित नहीं करता अपितु यह प्रापक प्राप्तकर्ता द्वारा नियंत्रित होता है, या दूसरे शब्दों में ऑडियंस द्वारा। उदाहरणार्थ, यदि वक्त कुशल है और हिंदी में प्रभावशाली वक्तव्य देता है परंतु श्रोता हिंदी नहीं समझते तो यहाँ कोई वास्तविक संप्रेषण संभव नहीं हो सकता। देखिए, जो संचार की प्रक्रिया है वह दो धड़ों पर बहुत आधारित होती है, यानी दो बिंदुओं पर बहुत आधारित होती है। एक बिंदु पर श्रोता है और दूसरे बिंदु पर बोलने वाला वक्ता है। अब वक्ता और श्रोता के बीच में जो भी संवाद स्थापित होगा संचार में, संचार की प्रक्रिया करने के लिए ये दो धड़े या दो बिंदु बहुत जरूरी है। बिना इन दो धड़ों के संवाद की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। यह समझना जरूरी है कि जनसंपर्क में संप्रेषण एक प्रापक घटना है, अर्थात प्रेषक इसे नियंत्रित नहीं करता अपितु यह प्रापक प्राप्तकर्ता द्वारा नियंत्रित होता है, या दूसरे शब्दों में ऑडियंस द्वारा। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, उदाहरणार्थ, यदि वक्ता कुशल है और हिंदी में प्रभावशाली वक्तव्य देता है परंतु श्रोता हिंदी जानते ही नहीं, ऐसे में वास्तविक संप्रेषण संभव नहीं होगा। इसीलिए जनसंपर्क का सबसे अहम पक्ष है प्रमुख जनता, या दूसरे शब्दों में संप्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों पर संप्रेषण को केंद्रित करना। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर उत्पाद, सेवाओं तथा उनका उपयोग करने वाली जनता की के साथ में क्या संबंध होता है। जैसे चिकित्सालय, चिकित्सालय में सीधे मरीजों और इलाज करने वाले डॉक्टरों का संबंध होता है। व्यापारी का सीधे ग्राहक से संबंध होता है। तो जब आप जनसंपर्क की बात करेंगे तो इन दो धड़ों की हमेशा बात करेंगे ही करेंगे। स्कूल में छात्र और टीचर, टेलीविजन में दर्शक, रेडियो में श्रोता, जनसंप्रेषण एवं एनआईओएस टेक्स्ट बुक्स में को आप जैसे सीखने वाले लोग, जैसे कि अभी मैं एक जगह बैठा हूं और आप जो सुनने वाले लोग हैं वो सामने बैठे हुए हैं, वो सभी हमारी बातों को सुन रहे हैं। उपरोक्त सूची में आपको वह लक्षित समूह या जनता, मरीज मिलेंगे जिस पर चिकित्सालय अपना संप्रेषण केंद्रित करता है। इसी तरह व्यापारी ग्राहक को, स्कूल छात्रों को, टेलीविजन दर्शकों को, रेडियो श्रोताओं को तथा एनआईओएस या इग्नू की बुकें, टेक्स्ट बुक, उनसे संबंधित पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं संबंध रहता है और जनसंपर्क इसी माध्यम से हम लोग करते हुए दिखाई देते हैं। जनसंपर्क में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनसंपर्क में हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया तीन के बाद दूसरे आने वाले चरण पर सम्मिलित होती है। मतलब क्या काम करता है जनसंपर्क? सबसे पहला काम करता है जागरूकता फैलाना, संदेश जनता तक पहुंचाना, स्वीकार्यता, जनता को संदेश के साथ राजी होना चाहिए। जनसंपर्क यही काम करता है कि जनता को राजी करने में अहम भूमिका निभाता है और उसके बाद कार्यवाही, इसके अनुसार जनता को कार्रवाई करनी चाहिए या अंतर्क्रिया करनी चाहिए। ये जनसंपर्क संपर्क के कुछ नियम हैं और इन नियमों के माध्यम से जनसंपर्क कार्य करता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत में जनसंपर्क का उद्भव। तो भारत में जनसंपर्क के उद्भव की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत में प्राचीन काल में जनसंपर्क कैसा था और प्राचीन काल से होते हुए जनसंपर्क वर्तमान परिदृश्य में कैसा है, इन सभी के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आपने प्राचीन काल की जब हम लोग बात करें तो आपने राजाओं की कहानियां पढ़ी होंगी, जो यह जानने के लिए कि लोग उनके प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे राजाओं के बारे में आपने सुना होगा कि राजा का शासन किस तरीके का चल रहा है, राजा को लेकर के प्रजा में किस तरीके के ख्याल उत्पन्न हो रहे हैं, क्या राजा के निर्णय प्रजा के अनुकूल हैं कि नहीं हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए राजा के पास में एक पूरा नेटवर्किंग सिस्टम, जिसको हम लोग जनसंपर्क के नाम से भी कह सकते हैं, गुप्तचर व्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं, या जासूसी व्यवस्था के नाम से भी जान लेते हैं। उनके द्वारा यह पूरी तरीके से स्थापित था और इन सभी का काम राजाओं के पक्ष में बातें करने वाली जनताओं का निष्कर्ष, राजा के आदेशों के विपक्ष में नाराज जनता का निष्कर्ष या नाराज लोगों का निष्कर्ष, राजा के निर्णयों का ऐसी जनता का निष्कर्ष भी जो ना राजा के निर्णय से खुश होते थे और ना ही राजा के निर्णयों से दुखी होते थे, उनका भी निष्कर्ष अमुक अमुक लोग राजा तक इन बातों को लेके जाया करते थे। ये राजा का एक इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग सिस्टम था। पेशेवर भाट के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो अपने पूर्वज मतलब अपने बुजुर्गों से पूछिए, अपने समाज में जो लोग बड़े हैं उन लोगों से पूछिए कि पेशेवर भाट राजा रानी के यशगान के लिए दरबार में बुलाए जाते थे। ऐसे लोग भी होते थे जो राजा को लोगों की सोच और नजरिए के बारे में सूचित करते थे। रामायण में एक चरित्र भद्र नाम का है जो राजा को प्रजा की अनुभूतियों और दृष्टिकोणों को बताता है। ये सभी प्राचीन भारत में अस्तित्व में रहे जनसंपर्क के उदाहरण हैं जो मैंने अभी तक आपको दिए। अब बात आती है कि और गहन जनसंपर्क व्यवस्था और क्लियर कट जनसंपर्क व्यवस्था या जनसंपर्क अधिकारियों की नियुक्ति। तो हम लोग फिर गहन और गहराई से जाएंगे तो गौतम बुद्ध से शंकराचार्य और गुरु नानक से कबीरदास जी तक हमारे सभी प्रेरक ऐसी भाषाओं में संप्रेषण करते थे जिसे लोग समझने में आसान पाते थे। कम्युनिकेटर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, या वो गौतम बुद्ध के समय की बात हो, या बाबा गुरु नानक देव के समय की बात हो, या संत कबीरदास के समय की बात हो, तो जो एक मूवमेंट आपको दिखता है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं इनकी तरफ, वह क्यों दिखता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भाषा की सरलता और जो संदेश नानक द्वारा लोगों तक दिए गए, या जो संदेश शंकराचार्य जी द्वारा लोगों तक दिए गए, या गौतम बुद्ध जी द्वारा लोगों तक दिए गए, या फिर अन्य जो भी अन्यान गुरु शिष्य परंपरा से जितने भी गुरु हुए, या जितने भी पैगंबर पीर मोहब्बत हुए, उन सभी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, ये स्ट्रैटेजिकली भाषा थी, या ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो आम लोगों को समझ में आए और ताकि लोग उस मैसेज को समझ पाए। और जब लोगों को उन मैसेजेस को समझने में अच्छा लगा तो उन्होंने लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया। यह संप्रेषण का बेसिक, जिसको कहते हैं कि निचोड़ है, कि इसी कॉन्सेप्ट पर संप्रेषण काम करता है। संप्रेषण कोई नए कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता, जनसंपर्क कोई नए कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता, यह ट्रेडिशनल इंडियन या ट्रेडिशनल वर्ल्ड वाइड जो जनसंपर्क की व्यवस्थाएं हैं उन्हीं से निकाला गया बिजनेस मॉडल है जिसको आज हम जनसंपर्क के नाम से समझ रहे हैं। इंडिया में पहले यह आध्यात्मिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता था या लोग फॉलो करते थे, क्योंकि शिक्षाएं मूल तरीके से या मैसेजेस मूल तरीके से लोगों तक एक्सेप्ट किया जाता था। वर्तमान में प्रोडक्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको समझें तो वर्तमान में प्रोडक्ट की जानकारी लोगों के दिमाग, दिल, आत्मा, मस्तिष्क, शरीर सब जगह उतार दी जाती है और एक अनवांटेड इच्छा को जनरेट कराया जाता है, और यहाँ तक कि एक यूज और थ्रो की जो नई इकोनॉमी है उसको भी लोगों को जनसंपर्क के माध्यम से आदि कराया गया और लोग बिना कुछ इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम जाने इस व्यवस्था में घुस गए और इसके आदि हो गए। और इसकी परेशानी हमारे देश में तो कम लेकिन वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप में देखने को मिल रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयावह हैं और हमारा देश अगर इस यूज एंड थ्रो की पॉलिसी से बच सके तो ज्यादा लाभकारी होगा। भारत में जब जनसंपर्क की बात की जाती है और पहले जनसंपर्क अधिकारी की जब हम लोग बात करते हैं तो सम्राट अशोक का के संदर्भ में बात अगर ना की जाए तो यह बहुत बड़ी विडंबना होगी। सम्राट अशोक ने अपने ही बच्चों को बुद्धिस्ट या बुद्ध परंपरा से संदर्भित मैसेजेस, संदेशों को प्रसारित करने के लिए श्रीलंका में भेजा। इसी नजरिए से उसकी पुत्री संघमित्रा इतिहास की पहली जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जानी गई। कह सकते हैं कि पहली जनसंपर्क अधिकारी के रूप में उनकी बेटी का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को जनसंपर्क में के करने के लिए या लोगों तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए दुनिया भर में मतलब भारत की बाउंड्री से बाहर भेजा। खैर उस समय श्रीलंका जो है भारत का हिस्सा हो सकता था, अखंड भारत का हिस्सा था, अलग से श्रीलंका कोई देश के रूप में स्थान नहीं रखता था। भारत में जनसंपर्क सुव्यवस्थित रूप से 1920 के दशक में भारतीय रेल ने शुरू किया। रेल ने प्रदर्शनी, समारोह और समाचार पत्रों में विज्ञापन जैसे जनसंपर्क गतिविधियों का प्रयोग भारत तथा इंग्लैंड दोनों में सैलानियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए किया। तो देखिए अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जब हम बात करते हैं, जब अपना ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत दिनों तक भूले बैठे रहे तो 1920 में भारतीय रेल ने इसको शुरू कर दिया और उसको मॉडर्न पब्लिक कम्युनिकेशन या पीआर या जनसंपर्क के रूप में हम लोग जान सकते हैं। उसमें बड़ी बात यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में लोगों को वही संदेशों को उनके मन, मस्तिष्क, दिमाग, आत्मा तक पहुंचाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ा। लेकिन जब हम मॉडर्न प्रस्पेक्टिव में और पॉलिटिकल डोमेन में जब हम जनसंपर्क को समझते हैं तो यहाँ पे जनसंपर्क का सबसे बड़ा दारोमदार होता है नेताओं के पास में। वहीं जब हम बिजनेस सेक्टर में पीआर को समझने की कोशिश करते हैं तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसके पास में दारोमदार होता है पीआर कराने का, अपने प्रोडक्ट का प्रचार कराने का, जनसंपर्क स्थापित करने का, उनका मेन मोटिव यही होता है। अब दोनों ही सेशंस को पैरेलली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जब हम लोग गुलाम थे तो हमारे देश में मूवमेंट्स पे मूवमेंट्स हुए, मतलब एक के बाद एक मूवमेंट्स हुए, और गांधी को 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा मूवमेंट या आंदोलन करने वाले व्यक्ति के रूप में टाइम्स मैगजीन ने संज्ञा दी और 1930 का जो मूवमेंट था वो इस दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्रता आंदोलनों के रूप में आंदोलन में से एक था। सबसे बड़ी गैदरिंग उसमें हुई और सबसे ज्यादा लोगों ने गांधी को फॉलो करना शुरू किया। तो गांधी जी ने किया क्या? मैंने आपको पहले बताया कि गौतम बुद्ध की जब हम लोग बात करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध की बात करते हैं, श्री शंकराचार्य जी की बात करते हैं, गुरु नानक जी की बात करते हैं, कबीर जी की बात करते हैं, इन सब ने जो मूवमेंट चलाया वो भक्ति मूवमेंट या फिर कहेंगे कि रिलीजियस मूवमेंट, या कबीर की जब हम लोग बात करेंगे तो पूरी तरीके से भक्ति मूवमेंट में लोगों को जोड़ा, लोगों के इनर कोर के अंदर जाकर के भक्ति भक्ति को जागृत किया और लोग इनके फॉलोअर्स बने। और अध्यात्म में बहुत गहराई तक जाएंगे तो अध्यात्म का ये विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है। और जब हम पॉलिटिकली इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो गांधी के मूवमेंट्स का 1930s के आंदोलन का गांधी जी को पूरे देश और पूरी दुनिया से एक व्यापक समर्थन मिलना शुरू हुआ, व्यापक एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। और ये कहीं ना कहीं गांधी की पीआर पॉलिसी के तहत बहुत कुछ था और बहुत सारे फैक्टर्स लगातार काम कर रहे थे। उसमें से गांधी का पर्सनल कम्युनिकेशन और नमक तोड़ो आंदोलन जो उन्होंने किया, जिससे लोगों से जो संपर्क उन्होंने स्थापित किया, मैन टू मैन कम्युनिकेशन होना, गांधी का पर्सनली गांव से कनेक्शन होना, गांधी जी की पूरी पद यात्रा को हम लोग देखेंगे। तो बहरहाल गांधी को ही की ही पूरी बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में अगर गांधी जी की ही पूरी बात करें तो यह भी कहीं ना कहीं मतलब सही चीज नहीं होगी। और लोगों का भी इसमें योगदान रहा है, लगातार हर एक उस व्यक्ति का योगदान रहा है जो गांधी जी के मूवमेंट में उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन पीआर करने की जो क्षमता गांधी जी के अंदर लीडरशिप जो थी, वो शायद उनके कई सारे एस्पेक्ट को जोड़कर बनाई गई थी। इसी तरीके से अभी करंट में अगर देखा जाए तो पीआर और बिजनेस कंपनियों को, बिजनेस मॉड्यूल्स के पीआर को देखा जाए या गवर्नमेंट के पीआर को देखा जाए तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियां, टेलीविजन, रेडियो, अखबार, मैगजीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर बोर्ड, बिल, साइन बोर्ड, बैनर्स, इन सब पर एक अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। कोई विचार को बेचता है तो कोई प्रोडक्ट को बेचता है। जब पॉलिटिकली पीआर की हम लोग बात करेंगे तो पॉलिटिकल पीआर कुछ नहीं बेचता है, सिर्फ विचारों को बेचता है, थॉट्स को बेचता है कि इस तरीके के चेंजेस हम लोग लाएंगे, हम लोग सत्ता में आए तो हम लोग ये करेंगे। और चीजें होती भी हैं, नहीं होती है तो सरकारें परिवर्तन हो जाती हैं, और होती हैं तो कंटिन्यू, तो मतलब वो एक वेल पीआर का एक तरीका है जिसमें एक नेता बहुत अच्छे तरीके से अपनी जनता को यह बताने में पूरी तरीके से सफल हो जाता है कि हाँ, अगर मैं जीता या मैं सत्ता में आया तो आपके लिए ये बड़े बड़े मोटे काम मैं करूँगा। और लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और अगर वो जीता तो इसका मतलब है कि एक सफल पीआर, उसने सफल पीआर का परीक्षण भी किया और उस परीक्षा में वो पास भी हुआ। ठीक वैसे ही जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन के लोग हैं तो हम लोग कम्युनिकेशन में जो पीआर सेल होता है, कम्युनिकेशन में जो विचार सेल होता है, हम लोगों को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि मार्केट में क्या पीआर सेल हो रहा है। ठीक है, मार्केट का डोमेन भी एक यहाँ से डोमेन निकलता है, आगे जाके आप MBA इन पीआर वगैरह कर सकते हैं या फिर BBA में पीआर एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी ब्रांच है, बड़ा डोमेन है जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझाया कि एक जब प्रोडक्ट आता है, चाहे वो बाबा रामदेव जी का आता हो, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आता हो, या फिर भेल का आता हो, या फिर प्राइवेट बहुत सारे छोटे छोटे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, कपड़े का प्रोडक्ट हो, सियाराम शूटिंग्स के विज्ञापन हो, या फिर साड़ियों के कलेक्शंस के विज्ञापन हो, या जो भी कंज्यूमेबल हो, उन सब चीज़ों के विज्ञापन, अमेजोन का विज्ञापन हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस बात की तरफ ले जाने का प्रयास है, कंज्यूमर को, वोटर्स को, सबका इस बात की तरफ ले जाने का प्रयास है कि जो वो कह रहे हैं वो आप मान लें। ये कहीं ना कहीं संचार में एक बुलेट थ्योरी की तरह ही काम करता है। आप अब जब बड़े होंगे, आगे जब कम्युनिकेशन को फर्दर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन में बुलेट थ्योरी होती है, और वो बुलेट थ्योरी सीधे कहते हैं कि डायरेक्ट शूट द माइंड ऑफ द पीपल। तो इस पीआर में जो पीआर करने वाला है वो अपने क्लाइंट के लिए क्या करता है, जनता का या वोटर्स के माइंड में डायरेक्ट मैसेज को हिट करता है, ठीक उसी तरह जैसे बंदूक से गोली निकल के शूट करती है। तो इसीलिए इसको बुलेट थ्योरी हम लोग कहते हैं। तो आज हम लोग जो बात कर रहे थे, आज हम लोगों ने जनसंपर्क की बात करी, जनसंपर्क में बहुत सारी बातें करी, भारतीय संदर्भ में बातें करी, तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।